अल्लाह ताला जब भी हमें किसी भी काम के लिए बुलाता है तो उस वक्त जो हमारा रिस्पांस होता है ना, वही असल में हमारी बाकी ज़िंदगी पे छा जाता है। बाज़ लोग आखिरी मौके का इंतज़ार करते हैं, बाज़ दूसरों के कहने का इंतज़ार करते हैं, बाज़ कुछ और चीज़ों को समेटने के इंतज़ार में होते हैं। तो जो सबक आपने पढ़ा है मुझे आपकी शेयरिंग से अंदाज़ा हो गया, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस ऑफ़ दी कुरान के सहाबे कराम जो थे उनकी ज़िंदगियों में क्यों हर काम करना आसान था, क्योंकि अल्लज़ी नस्तजाबु लिल्लाहि वलिर्रसूली, जब इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी की चीज़ों को अल्लाह ताला के रास्ते में छोड़े, और कहाँ वो तो एक जंग से टूटे हुए आए और दूसरी जंग के लिए निकले, तो फिर ये चीज़ इंसान के लिए कितना बिग डिफरेंस बनाती है। तो हम सब अपने लिए भी दुआ करें और एक दूसरे के लिए भी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला जब भी नेकी का कोई मौका आए तो हम उसको सुनने के बाद कबूल करने वाले बने, ना कि हम उसको डिले करने वाले बने। कंटिन्यू करते हैं हम अपने उसी टॉपिक को जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी बात सोचें हमारी कितनी बड़ी दुश्मन होती हैं और हमारी तरक्की और हमारी कामयाबी को खा जाती हैं, और हम सारी ज़िंदगी दूसरों को ही ब्लेम देते रह जाते हैं कि फ़लाँ की वजह से फ़लाँ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिलख़ैर। सेल्फ ग्रूमिंग के सिलसिले में हम पढ़ रहे थे सोचों पे पहरे, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी अपनी ही कुछ सोचें हमें आगे बढ़ने से रोक लेती हैं। बस अब हम ये सोचते रहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे कब, जब दूसरे हमें आगे बढ़ने देंगे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हम आगे कब बढ़ते हैं, जब हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम दुनिया में उसी वक्त होता है जब उसको करने वाला ठान लेता है। जब हम उसको करने की नियत करके जम जाते हैं फिर अल्लाह ताला भी बाज़ दफ़ा हमारे मशवरे को कबूल कर लेता है। हम में से कोई अल्लाह ताला को मजबूर नहीं कर सकता, ना उसकी ये शान है, लेकिन ये याद रखिए कि जो भी करवाना है हमने अल्लाह से, हमें उसको साबित करना पड़ेगा। तो जो हमारे खिलाफ़ ही हमारी सोचें थी उनमें से हम जो चीज़ें अभी तक देख चुके, हर सेशन से पहले मैं इस सोच के साथ भी दोहराती हूँ कि पिछली सबक का होमवर्क कर लिया हो तो अगला सबक पढ़ने में मज़ा आता है। अगर हम अपनी सोचों को अमली तौर पर दुरुस्त नहीं कर रहे तो सिर्फ़ इस क्लासरूम में बैठकर बात नहीं बनेगी, फिर हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में इन चीज़ों का अक्स नज़र आ रहा है, आपको अपनी अमली ज़िंदगी के तकाजे अब बेहतर तरीके से निभाने आ रहे हैं, तो फिर तो फ़ायदा है। तो वरना जहाँ बाकी इल्म लिया इसको, इस इल्म को भी हम ले लेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो हमारी दुश्मन होती है वो क्या है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं दूसरों के बारे में, नेगेटिविटी का इतना शिकार होते हैं, हम नेगेटिविटी का शिकार होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि कोई दूसरा बंदा हमारे लिए किसी काबिल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आप देखिए कि दूसरी चीज़ जो थी वो हमने देखी कि बात का भतंगड़ बना लेते हैं, छोटी सी रीज़न को इतना बड़ा बनाकर पेश करते हैं कि दुनिया में हमसे कोई ज़्यादा मजबूर ही नहीं है। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन उन चाहतों को मैं कर सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए में बदलना है, अपने अमल को देखना है, ना कि हमने सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद करनी है। फिर चौथी चीज़ हमने देखी थी लेबल लगाना, खुद पे भी लेबल लगा देते हैं और कई लोग बचपन से हमें कुछ लक़ब दे देते हैं और हम उनसे अपने आप को निकाल ही नहीं पाते। पांचवी चीज़ हमने देखी थी तारीफ़ का की तरदीद, कब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम उसको पीछे डालते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं, और एक तरह से हम तारीफ़ को ना सुनकर अपने लिए इस चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं कि तुम्हें, बस जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम उस तारीफ़ को नहीं सुनते, सुनकर उसके ऊपर उल्टी बातें करते हैं। आज हम छठी सोच देखेंगे जो हम सब के लिए काबिले गौर है, और वो क्या है, मिस्टर परफेक्ट कहलाना। یعنی چھٹا زہر آلود تیر پھینکنے والا قبیلہ کیا ہے کہ خود کو پرفیکشنسٹ کہلانے کا شوق. خود سے پوچھئے کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, جن کو ہر چیز ہر وقت ہر حال میں جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ملنی چاہیے, نہیں تو وہ کبھی خود سے خوش نہیں ہوں گے. کیا آپ کو اپنے آگے ایسے اونچے رسے لگانے کی عادت ہے جنہیں آپ کبھی پھلانگ ہی نہ پائیں؟ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ زیادتی ہے. اس قسم کے جملے جو ہیں ایک انسان کو بعض دفعہ اس کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں. پھر ایک جملہ ہم ہمیشہ کہانیوں میں پڑھتے آئے, بچپن میں پریوں اور شہزادوں کی کہانیاں ہوتی تھی اور پوری کہانی کے بعد آخری جملہ کیا ہوتا تھا, پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے. تو یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے. پہلی بات یہ کہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے, نہ ہی آپ پرفیکٹ ہیں, نہ ہی میں پرفیکٹ ہوں, نہ ہی ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ پرفیکٹ ہیں, بلکہ اس دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے. پرفیکٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات, کلو شیئن ہالکن الا وجہ, اللہ کے چہرے کے سوا ہر چہرہ ہلاک ہونے والا ہے. اگر ہر معاملے میں پرفیکٹ سے کم پر آپ کا خون کھولے تو یہ اپنے ساتھ کھلی زیادتی ہے. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ ایک انسان اپنے مشن میں اور اپنی بات میں اتنا سچا ہو کہ پرفیکشن کی جستجو کرے, ہر چیز کو احسن درجے پہ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اپنے معاملے جو بھی کام آپ کا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا کام پڑھنا ہے, میں پڑھا رہی ہوں تو میرا کام پڑھانا ہے, اسی طرح جو بندہ جس جگہ بیٹھا ہے اس جگہ کے تقاضوں کو چھوڑنا یا اس کو آدھا کچا پکا کر کے اس سوچ کے ساتھ کہ چلو چھوڑو اتنا ہی بہت ہے, تو یہ بددیانتی ہے. لیکن زندگی کے ہر معاملے میں, ہر چھوٹی بڑی چیز میں پرفیکشن ڈھونڈنا ایک ایسی کوشش ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوتی, صحیح ہے, لا حاصل. اور اس کا ایک دوسرا ایفیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ افسردگی, افسردہ رہنے کی گارنٹی ہے. جو لوگ ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں, دیکھیں اس کو مکس نہ کیجیے گا. پرفیکشن کا یہ نہیں مطلب کہ اب آپ آسان درجے پہ کورس نہ کریں, آپ آسان درجے پہ تفسیر نہ لیں, آپ اچھے طریقے سے ٹیسٹ نہ دیں, آپ اچھے طریقے سے روم سیٹ اپ نہ کریں, چل چلو نہیں کرنا. مطلب یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ کر کام چھوڑتے ہیں کہ ابھی حالات پرفیکٹ نہیں ہوئے. چلیے پرفیکٹ کو موافقت کہہ دیجئے, ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں, ابھی میرے بچے بڑے ہیں, ابھی یہ ابھی وہ ابھی یہ ابھی وہ. اس قسم کی باتیں کر کے لوگ بعض دفعہ اپنے آپ کو کاموں سے پیچھے کر لیتے ہیں. اور پرفیکشنسٹ ہونا یا پرفیکٹ حالات کا انتظار کرنا خود کو فرسٹریشن کے قریب کرنا ہے. اگر فرسٹریشن ہے آپ کے پاس, ہر وقت آپ الجھے رہتے ہیں, پریشان ہیں, ارد گرد والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں, پریشان ہیں, تو آپ سمجھیے کہ آپ ٹھیک طرف نہیں چل رہے. ہر روز آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی, خود سے وابستہ توقعات کبھی پوری نہ ہوں گی, اور یہ مان لیجئے کہ آپ کا ہر کام پرفیکٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ انسان ہیں, خود کو انسان رہنے دیجئے. پرفیکشن کی بیماری آپ کی خود اعتمادی کی بنیادیں ہلا دے گی. جو رہا سخا کانفیڈنس ہے نا, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے یہ سوچ کر میرے سے تو کچھ ٹھیک ہونا نہیں, اب میں کیسے کروں, اور ناممکن ہے, اور دس اینڈ دیٹ. اپنی چھوٹی موٹی کامیابیوں کو بھی اہمیت دیجئے, خود کے کندھے پر تھپکی دیجئے, خود کو شاباش کے انجیکشن لگاتے رہیں, اور جب توقعات پوری نہ ہو رہی ہوں تو سازشی آوازوں کی بجائے, یہ سازشی آوازیں ہیں نا, تم تو کبھی کر ہی نہیں سکتے, تمہارا تو کوئی کام ٹھیک ہوتا ہی نہیں, تمہیں آتا ہی نہیں ہے, تمہارے نصیب میں نہیں ہے, ایسے جملے نہ بولیں, بلکہ دوستانہ آوازوں کا والیوم اونچا کر کے خود سے کہیے، یعنی ایسی بات ایسے وقتوں میں جب آپ اپنی توقعات پہ پورے نہ اتریں یا آپ کا ماحول آپ کا پورا ساتھ نہ دے، تو الٹی باتیں سوچنے کی بجائے سیدھی باتیں سوچیں، اچھی باتوں کو اونچا کریں اور خود سے کہیے، اس صورتحال میں بہتری کے لیے میں کیا کرنا چاہتی ہوں، اور پھر اسے کر گزریے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق ہر فیلڈ آف لائف سے، ہر چیز سے. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے دورہ قرآن یاد آ رہا ہے، ہر سال پہلے سے ذہن سازی ہوتی ہے اور کیا کچھ ذہن میں ہوتا ہے، ٹاپک، مفہوم، جو لوگ سنتے ہیں ان کو اندازہ ہے اس بات کا. لیکن اب بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سال جب شروع ہوتا ہے یا کوئی چیز اور سامنے آ جاتی ہے یا اس وقت نئے آئیڈیاز آخری وقت پہ سوچتے ہیں، تو پھر میں کیا سوچتی ہوں، چلیے اس کو اگلے سال کے لیے روک لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اتنا ہی ہو سکتا ہے. ہر دفعہ تفسیر کرواتے ہوئے میں خود کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کی تفسیر اس سے بہتر کراؤں گی. کوئی بھی کام ہوتا ہے، چھوٹا بڑا، جس طرح کا بھی، جس لیول کا، تو الحمدللہ میرے ذہن میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی آخری موقع تھوڑی ہے، اس کے بعد بھی تو موقع آئیں گے نا، تو میں اس میں کر لوں گی. لٹرلی کچھ چیزیں عین وقت پہ خود چھوڑ دیتی ہوں اس سوچ کے ساتھ، اب یہ مناسب وقت نہیں ہے، اس کے بعد جب وقت آئے گا تو کروں گی. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع بھی دے ہی دیتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیونکہ جب آپ مطمئن نہیں ہوتے نا اپنے آپ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایک اور چانس دے دیتے ہیں کہ چلو اب ایک اور کوشش کر دیکھو، ایک اور دیکھ لو. اور آپ دیکھیے گا کہ جتنا زیادہ آپ اپنے مشن سے سچے ہوں گے نا، کوئی بھی مشن ہے، کھانا بنانے سے لے کر باہر کے کام، دین کے کام، اسلام کی خدمت، پڑھنا، پڑھانا، سوشل ورک، جس کام میں آپ سیریس ہیں نا، سنجیدہ ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے گا، یہ یاد رکھیے گا. یہ ایک انسان اپنے آپ کو خود بتائے کہ میں کہاں ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے جو ہم سب کو اپنے لیے لینا ہے. جب تک میں اور آپ اپنے حالات سے جنگ نہیں کریں گے نا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہر دن مسئلہ کھڑا ہوگا، ہر دن ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جو آپ لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کیا خیال ہے، اب یہ چھٹیاں آپ کو سکون دیتی ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں اچھا پھر کورس چھوڑ دیتے ہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب میرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر میں بڑے سکون سے کورس کروں گی. اب کیا ہوگا، ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہونے تک آپ کی، اللہ نہ کرے، صحت کمزور ہو جائے، دماغ اور زیادہ کمزور ہو جائے. جو کرنا ہے نا آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. آپ نے آپ کو ہر چیز سے آزاد کر کے یہ کہیے، اب پازیٹیو سوچ کیا ہے اس معاملے میں، ان حالات میں دی بیسٹ کیا کر سکتی ہوں، اس کو سمجھ لیں. اب دیکھیے کہ حالات میرے اور آپ کے ہاتھ میں اگر 100% نہیں ہے نا، تو مور دین 50% ضرور ہوتے ہیں. مینج آپ نے میں نے خود کرنا تھا. اور آپ لکھ کے اپنے حالات کو چیک کر لیں، 5 سے 10% ایمرجنسیز ہوتی ہیں زندگی میں، یعنی ہفتے کے، مہینے کے 30 دن ہیں نا، چلیے ہفتے کے 5 دن کلاس کے ہیں. ہر دن نہیں، بس ایک دن، ایک فرق پڑتا ہے، ایک دن کوئی پرابلم ہوتا ہے، 4 دن تو سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو بس آپ سمجھ لیں کہ میری زندگی میں کبھی بھی پرفیکٹ حالات نہیں آئیں گے. ہاں، کمی پتہ کیا ہوتی ہے ہمارے اندر، تھوڑی سی امپرفیکشن کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں، آلٹرنیٹ نہیں آتے ہمیں ڈھونڈنے، ہم اپنے سورس کو اس طرح نہیں یوز کر پاتے کہ جس طرح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بس آپ دیکھیں، آپ سب اسکول میں آتے ہیں نا، اس وقت ہمارا یہ سیشن ہو رہا ہے، کتنا لمبا ہوگا، آپ چاہیں تو میں بھی ختم کر دوں، अगर आपको इसकी कोई वैल्यू हो और आप समझें कि वाकई ये मेरे लिए अहम है, तो क्या आप इससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठाएंगे? भाड़ में जाएं आपके काम, वॉशरूम में जाना है थोड़ी देर सब्र कर लेती हूँ, भूख लगी है बर्दाश्त कर लेती हूँ, सर्दी लग रही है चुपके से बैठी रहती हूँ, अभी इतनी तो नहीं, बाहर रोड पे तो नहीं खड़ी, गर्मी लग रही है इतनी तो नहीं। जब आपको इस चीज़ का यकीन होगा ना कि मैंने इस सेशन को द बेस्ट लेवल पे लेना है, तो आप ले लेंगे, वरना शैतान क्या कहेगा आपको पता? ये काम बस अभी कर लो, जल्दी से कर लो। और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ आपको, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, आप में से जो ये पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्स है, जो हमारे सेशंस हैं, इनको पूरी अहमियत नहीं दे रहे, इसको परफेक्शन से नहीं ले रहे ना, तो उनके अंदर फिर कमी ही रहेगी। क्योंकि जब आप सीख रहे हैं कि आपने कैसे तरक्की करनी है, आपने अपनी ज़ात से क्या निकालना है, उसको सीखने में ही कमी है, तो फिर उसके ऊपर अमल कहाँ होगा? दिल दिमाग सोचें सब पीछे करके सिर्फ मैं और मेरी कामयाबी, मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं नाकाम क्यों रहूं? और याद रखिए कि शैतान इतना होशियार है, इतना अक्लमंद है, हमें 10 चीज़ों मिल जाता है ताकि किसी अहम चीज़ से हमें दूर कर दें। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें एनर्जी देती हैं। आप देखिए खुद, आप अपने आप से, खुद अपने आप से खुद पूछिए, कोई भी काम करते हैं, यानी आप यहाँ कुरान सीख रहे हैं ना, क्यों सीखते हैं? कभी आपने सोचा? आप कामयाब होना चाहते हैं। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाब अन्नार। जब तक चीज़ों को उनकी जगह पे नहीं रखेंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने तो देखा है कि घर का काम जो औरत करती है ना, वो भी नहीं अच्छी तरह कर सकती अगर वो उस काम को भी अपनी दी बेस्ट एबिलिटी के साथ ना करें। अक्सर सोचिए, खुद से पूछिए, हंडिया क्यों जलती है? अक्सर रोटी तवे पे डाल के क्यों भूल जाती हूँ? आप नोट कर ले, उसमें वजह यही होगी कि आप उस वक्त उस काम को आसान दर्जे पे नहीं कर पाए, किसी और काम में लगे तो भूल गए। याद कब आया? जब जलने की स्मेल आई। इस्त्री से कपड़े क्यों जलते हैं? तो सारी बात को अगर आप सामने रख के देख लेना, तो पहली बात है कि मैं और आप परफेक्ट हालात में कभी नहीं आएंगे। हमारी ज़िंदगी का कोई दौर ऐसा नहीं है कि जिसमें दूसरों का इंटरेक्शन ना हो, दूसरे हम पे या हम उन पे असरअंदाज ना हो। पहली ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरी बात ये है, इसी दुनिया में रहकर काम करना है, इन्हीं हालात में रहकर काम करना है, इसको नहीं छोड़ सकते। करना क्या है? द बेस्ट एफर्ट, आज के हिसाब से द बेस्ट, जिसको आप कहना चाहिए ना कि सब नकम्मों में बेहतरीन नकम्मा, सब नाकाम लोगों में सबसे अच्छा नाकाम। ये कैसे होता है? ये इसी तरह ही होगा कि जिसमें आप देखेंगे कि इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ बेहतर, बेहतरीन क्या कर सकती हूँ, इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ, खुद से पूछें। बस आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम चलते हैं, इस कोर्स को रखें सामने, पढ़ना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, लिखना भी है, असाइनमेंट भी है, ट्रांसलेशन भी याद करनी है ना, ये चीज़ें। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, हो सकता है आपको साथ क्लासरूम की सफाई भी करनी पड़े, आपको घर जाके दूसरे कामों को करना। आप और मैं इन सारी चीज़ों को अगर मैनेज कर ले दी बेस्ट पे, फिर जो लूप होल्स रहते हैं ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको पीछे कर दें। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं, ये हमारा दिन रात का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट जगहों पे साथियों से जब काम लेते हैं, करते हैं, देते हैं, सुनाइए भाई आपका कोर्स कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला फ़िलहाल तो नहीं है, साथी सब ठीक आ रहे हैं, शुक्र है। यानी कुछ हमारे कोर्सेज दुनिया में ऐसी ऐसी जगहों पे जो चलते हैं, ऐसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचती हूँ कि वाह ये तो बड़ी खुशकिस्मत है, इनको तो बेहतरीन माहौल मिल गया, इनके तो साथी भी अच्छे, इनका हर चीज़ ही अच्छी है, इनके रिसोर्सेज भी बड़े अच्छे हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे इंचार्जेस होते हैं, मसले पे मसला, साथी उनके ठीक नहीं, जगह उनको नहीं, उससे मसला, उससे मसला। जब सारी चीज़ों को जमा किया ना, तो पता क्या चला कि मसला उनकी अपनी शख्सियत में होता है। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हम खुद ही अपने रास्ते का पत्थर ना हो। कितनी बदनसीबी है उस शख्स की जिसको कब्र में जाने के बाद इस बात की खबर मिले, तुम्हें पता है तुम कहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन तुम थोड़ा सा नीचे ही रहे हो। क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे शख्सियत में ये कमी थी। बस उस वक्त वाकई वो आयतें याद आ रही हैं कुरान की के यौम यज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैही, कि जालिम उस दिन अपने हाथों को काटेगा। अफसोस कोई क्या कहेगा, वलौ अन्न लना कर्रतन, काश एक बार मुझे दुनिया में भेजा जाए। इसी तरह सूरत मोमिनून में भी आता है ना कि इंसान उस वक्त ख्वाहिश करेगा कि एक दफ़ा वापस भेजा जाऊँ। सूरह मुनाफिकून में आता है, लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, क्यों नहीं मुझे मोहलत दी थोड़ी सी। तो जो करना है आज करना है, कर लेंगे फ़ायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो किसी से ज़्यादा आपका मेरा अपना नुकसान होगा। दुनिया में कोई हमारे नफ़े और नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं है, हम खुद हैं। मैनेज कैसे करें चीज़ों को? बस आप यहाँ आते आप कहते हैं हमें सीखना भी है, हमें फ़ंड रेजिंग भी करनी है, हमें सफाई में भी हिस्सा डालना है, हमें अपने ऑफिस में बैठ के भी काम सीखना है। मैनेज कीजिए, सिंपल सी बात है। जब आप छोटी छोटी चीज़ें डिले करते हैं तो एक जगह एक की जगह पे बाज़ दफ़ा फिर दूसरी चीज़ कर रहे होते हैं। आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे जब सही वक्त पे सही, एक वक्त में दूसरा नहीं करना। अगर इस वक्त आप क्लास में हैं और सोच आप क्या रहे हैं कि आज मेरी क्लीनिंग की ड्यूटी है और मैंने जाने से पहले ये जगह साफ़ करनी है, पता नहीं कैसे होगा, फिर मेरी बस मिस हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे बाहर खड़े रहेंगे, फिर ये और वो, नुकसान क्या होगा? आप यहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं। इससे तो बहुत बेहतर था कि आप यहाँ से उठिए और क्लीनिंग कर लीजिए, जाइए कम से कम उसको तो परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करें। यहाँ बैठकर ज़हनी क्लीनिंग करके आपने इस वक्त का हक नहीं अदा किया। तो एक छोटा सा गुर लिख ले, जहाँ हूँ वहीं रहूँगी, जो काम कर रही हूँ ना यही करती रहूँगी। फिर आप देखिएगा कि आपके लिए कितनी आसानी मिलेगी। और मैं अल्लाह ताला से अपने लिए भी और आपके लिए भी यही दुआ करूँगी कि हमारे हालात इतने ना बिगड़ें कि हम जो काम करें उसका हक अदा ना कर सकें, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अब आपका कोई सवाल या कोई बात इस बारे में है तो आप पूछ सकते हैं, मैं माइक डाउन करती हूँ, आप लोग ले लीजिए। जी देखिए, जो आपका ये सवाल है कि हम एक वक्त में बहुत सारे कामों को साथ साथ सोच रहे होते हैं तो इसको कैसे करें, इसका सिंपल सा जवाब यही है। पहली बात है कि एक वक्त में आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस्म की ये सुन्नत है, आंखें अपना काम कर रही हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, दिमाग यानी जिस्म का हर पार्ट अपना काम कर रहा है। तो इसको आप ज़रा जिस्म के एग्जाम्पल से ही समझें। आंखें काम कर रही हैं ना किस चीज़ को देखने का, अक्स बनाती हैं, हमें दिखाती हैं, रोशनी और अंधेरे का फ़र्क करती हैं। ये भला क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये अपने इस काम पे फोकस्ड है। इमेजिन कीजिए कि किसी की आंखें किस तरह मैं देखूँ ये क्या हो रहा है, सुनने का काम करने लग जाए, नुकसान क्या होगा? वो सुन तो नहीं सकेंगी क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन वो देखने के काम में कमी करेंगी। आप चार काम करें लेकिन जहन में रखें कि मैंने इन चार कामों को एक साथ कैसे करना है। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल खाना पकाने से लेती हूँ। जैसे आपके घर में आज दावत है, आपको घर भी साफ़ करना है, आपको एक दो खाना भी बनाना है। पहली तो बात याद रखें कि कोई ऐसा टारगेट बनना ही ना जो अनअचीवेबल हो, जो आपको स्ट्रेस में डाल दें। जैसे मैं अपने ऊपर लूँगी कि मुझे लगता है कि अगर मैं पाकिस्तानी स्टाइल का खाना बनाऊँगी तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, या मुझे बहुत बर्तन धोने पड़ेंगे, या बाद में कुछ से कुछ होगा। और अगर इसकी जगह मैं कोई बेकिंग या का खाना या कोई ऐसा खाना जो निस्बतन आसान है, तो मैं कभी भी किसी दावत में ये नहीं पसंद करूँगी कि मैं बिरयानी भी बनाऊँ, साथ नहारी भी बनाऊँ, कोरमा भी बनाऊँ। मैं नहीं करूँगी। मुझे पता है कि इसका आखिरी नतीजा ये है कि मेरे घर में स्मेल होगी, मेरा किचन बर्तनों से भरा होगा, और वो बात नहीं बन सकेगी जो बनानी है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास वो सारी चीज़ें ही ना हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं सोचूँगी कि अच्छा आज की दावत में क्या ऐसा बनाऊँ कि मेहमानों को मज़ा आए। और ये तो आप लोग भी जानते हैं ना कि हर दिन हम अगर अपने मुल्क के खाने खाते हैं तो कभी कभी हमें कोई दूसरा खाना भी अच्छा लगता है। पहले तो मैं ये सोचूंगी कि जो खाने दूसरे रोज़ खुद बनाते हैं, मेरे से उनको वो खाना खा के क्या खुशी होगी। तो मैं क्या करते, अच्छा ऐसा करते हैं चाइनीज़ बना लेते हैं। एक तो मेरे लिए चाइनीज़ बनाना बहुत आसान होगा अल्लाह के हुक्म से, दूसरा जो लोग आएंगे दावत में उनको भी चाइनीज़ खाए हुए मुद्दत हो चुकी होगी। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उस चाइनीज़ खाने को थोड़ा सा देसी स्टाइल दे दूँ, बना के उसमें बाद में थोड़ी मिर्ची डाल दूँ, थोड़ा उसको स्पाइसी कर लूँ। अब मैंने पहले मैनेज करना है क्या मेरे किचन में चाइनीज़ खाना बनाने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है। बस दफ़ा आप देखिए कि एक छोटी सी चीज़ की कमी से आप खाना ही नहीं शुरू कर पाते। मैंने सिस्टर्स को देखा खाना पकाने बैठी, पता चला प्याज ही नहीं है। चलो अब बैठे रहो, सब कुछ रखा हुआ, प्याज नहीं है तो खाना शुरू कैसे करें। तो आप चार छः काम इकट्ठे करें, लेकिन मैनेज कैसे करें कि इस वक्त अगर चूल्हे पे रख दिया चिकन उबलना, तो इस दौरान मैं और क्या कर सकती हूँ। आप कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपको चूल्हे के पास नहीं खड़ा होना पड़ता। आपने एक दो काम किए, चले आलू उबालने रख दिए, आपने चिकन बॉईल किया, कुछ दो तीन चूल्हे चला दिए, टाइम आपको जहन में। इस दौरान आप एक चक्कर लगा के अंदर से कमरों की सफाई कर लें। लेकिन कुछ वक्त ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ किचन में खड़ा होना होगा पास, तो उस वक्त के साथ बर्तन निकाल लें। मुझे लगता है कि जब हम अच्छी तरह मैनेज करते हैं, कम बर्तन भर के, कम फ्रस्ट्रेशन के साथ, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मसलन जैसे मुझे याद हैं कई ऐसे मौके, अगर यही खाने बने भी जो मैंने शुरू में आपको कहे हैं, इकट्ठा बना लें, मसाला है दो खानों का इकट्ठा भून लें, प्याज इकट्ठे काट लें, अच्छा एक ही पतीली है उसमें पहले बिगार लगा लिया है, बाद में उसमें कोरमा रख दें। यानी ये भी फिर मैं यही कहूँगी कि आपकी अपनी मैनेजमेंट होती है। बाज़ दफ़ा हम बहुत बखेर लेते हैं और बाज़ दफ़ा हमें हमसे टैकल नहीं होता। तो फिर वही कहूँगी कि परफेक्ट ना भी हो सके, बट दी बेस्ट एफर्ट ज़रूर कर लें। मसला क्या है कि जब हम ढेरी ढा के बैठ जाते हैं, क्योंकि ये काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो रहा तो बाकी नहीं कर सकती। मसलन आप देखिए ना कि आपने दावत पकानी थी, आइडियल दावत जो हमारे कल्चर की, उसमें तो यही है, चावल भी बने, सालन भी हो, 10 चीज़ें बने। चूँकि मैं ये नहीं कर सकती तो मैं दावत ही नहीं पकाऊँगी। गलत। आप क्यों नहीं एक दावत ऐसी बनाते जिसमें आप दाल चावल बनाएं? कितनी को मेहनत लगती है दाल बनाने में। आई थिंक सो चाय का पानी चूल्हे पे रखना और दाल चढ़ाना एक बराबर है। जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर में आप चीज़ें डाल के उसको हल्के दम पर डाल दें। हाँ, आप दाल बनाएं बड़ी मज़े की। आप कहते हैं आज दावत में दाल चावल बनेंगे और साथ में उसके कोई एक ऐसी चीज़ करूँगी जो ओवन में बेक करनी है। यकीन करें आपकी दावत यूनिक भी होगी, लोगों इंजॉय भी करेंगे और आप बिल्कुल नहीं थकेंगी। बाज़ वक्त लोगों के खानों का मेन्यू देख कर मैं सोचती हूँ इन्होंने क्या सोच के मेन्यू बनाया। एक तो साफ लग रहा होता है आधा दिन लग गया होगा इनका। अब अगर आपने बिरयानी बनाई तो साथ आपको कोफ्ते बनाने की क्या ज़रूरत थी? और जब आपने कोफ्ते बना ही लिए तो फिर आपको साथ कोरमा बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आने वाले भूखे? और क्या वो इतना खाते हैं? अब बिरयानी खाई, उनको मज़ा आया, आप और डालने दीजिए। नहीं, अब कोरमे चखते हैं, कोरमे के साथ पुलाव, फिर रोटी चाहिए। आने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड, आप भी। तो अपने गोल्स को छोटा कर लें। मैंने तो अब यही सीखा है, अगर आपने अच्छे तरीके से काम करना है ना, तो अपनी ज़िंदगी को सिंपल इस तरह करें कि अच्छी हो। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि बेकार दावत, इसी को अब दावत को आप जिधर मर्ज़ी ले जाइए। आपने जो काम करना है उसका टाइम मुकर्रर करें और उस वक्त में उसको करें। अगर यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं इस वक्त तो पढ़ें, अगर ब्रेक में खाने की ब्रेक आई है तो उठ जाएं इस कमरे से, यहाँ आके फिर बैठ के कुछ सबक ना याद करें। जिस वक्त जो काम करते हैं ना वहाँ वो रहें। मुझे कई लोग पूछते हैं कि इतनी डिफरेंट चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, तो मैं उसको यही जवाब देती हूँ कि मेरी आदत है जिस वक्त जो काम कर रही होती हूँ 110% मैं अपने आप को उसी चीज़ में रखती हूँ। किचन में काम करते हुए मैं आपको बिल्कुल एक घरेलू खातून समझती हूँ, और अगर सफाई करनी पड़े तो सफाई करने वाली खुद को समझ लें। पढ़ाते वक्त अब मैं इस वक्त को अच्छा, ज़रा मैं बीच में ज़रा चावल दे खाऊँ, ज़रा रोटी डालूँ, तो मैं आपको ठीक नहीं पढ़ाऊँ? जब मैं पढ़ाती हूँ मुझे दुनिया का कोई और काम ही नहीं याद रहता। तो साथ साथ दुआ भी करें कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, कि अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे दे, और अल्लाह से हिकमत बड़ी मांगा करें। ये जो हम सोचें ना हिकमत, शायद ये कोई पंचायत बिठाने का नाम है और कोई ख़ानदान के बड़े बड़े मसलों को हिकमत से सॉल्व करें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हिकमत का ताल्लुक तो चाय बनाने से भी है। जिनकी चाय अच्छी नहीं बनती वो गैर हकीमाना चाय होती है। खाना बनाने में भी ऐसे ही होता है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। और कोई बात अगर पूछना चाहें तो मैं माइक ड्रॉप करती हूँ। क्विकली माइक लिया करें ताकि हमारा एक एक मिनट यूज़ हो। चलिए ठीक है, फिर यहाँ रुक जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास यहाँ दर्स अटलांटा में 11 बजे से 1 बजे यहाँ के, तकरीबन अभी 7:49 है, इसको प्लस कर लीजिए तो 8, 9, 10, 11, 3 घंटे और 10 मिनट हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास माए वहाँ नेट हुआ तो आप लोगों के साथ लें। और आज का टॉपिक बहुत अहम है, सक्सेस यानी कामयाबी की शराइत, क्या कामयाब होने की शर्तें हैं। मेरा दिल है कि आप सब भी सुन सकें तो ज़रूर सुने। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी 3, 3.25 घंटे के बाद।